नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आध्यात्मिक नगरी वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम की मेजबानी करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री 9 से 16 सितंबर तक भारत यात्रा पर हैं। वे कल शाम वाराणसी पहुंचे, जहां उनके पारंपरिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री रामगुलाम का यह दौरा मार्च में प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस यात्रा के बाद हो रहा है, जब दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी, खासकर डेवलपमेंट पार्टनरशिप और कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और नए क्षेत्रों जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्लू इकोनॉमी में साझेदारी बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा होगी। हिंद महासागर क्षेत्र में एक करीबी समुद्री पड़ोसी के रूप में मॉरिशस भारत की महासागर दृष्टि और नेबरहुड नीति के लिए अहम है। दोनों देशों के बीच गहरा होता तालमेल दोनों देशों की खुशहाली के साथ साथ ग्लोबल साउथ की सामूहिक आकांक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। आलोक राय, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
प्रधानमंत्री मोदी आज शाम उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वे अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कल गुजरात के सांणंद विधानसभा क्षेत्र में 66 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास किया। निर्वाचन क्षेत्र के समग्र विकास का वादा करते हुए श्री शाह ने कहा कि सांणंद के हर गांव में 2029 तक जलापूर्ति, सड़क, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और वनीकरण सहित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पूर्व सैनिकों को आज कोलकाता के मैदान इलाके में गांधी प्रतिमा के सामने धरना देने की अनुमति दे दी है। हाल ही में कोलकाता में पूर्वी कमान के सैन्य कर्मियों द्वारा मैदान इलाके से तृणमूल कांग्रेस के एक अस्थायी मंच को हटाए जाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सेना पर कथित रूप से कुछ टिप्पणियां की थीं। न्यायालय ने धरना की अनुमति देते हुए कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। प्रतिबंधों में यह भी शर्त है कि कोई भी भाजपा नेता इसमें शामिल नहीं हो सकता और कोलकाता पुलिस को प्रदर्शन में भाग लेने वालों के नाम उपलब्ध कराने होंगे। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV तकनीक के हस्तांतरण के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के वैश्विक बाजार में भागीदारी बढ़ाना है। इसरो ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता देश के अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों की दिशा में बड़ा मील का पत्थर है। नेपाल में युवाओं के प्रतिनिधियों के एक समूह ने काठमांडू में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रस्तावित किया है। हालांकि इस प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त करते हुए कई युवा इस निर्णय का विरोध करने लगे हैं। इधर बिहार में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बिहार पुलिस और सशस्त्र सीमा बल सीमा पार लोगों की आवाजाही पर नजर रख रहे हैं। इस बीच नेपाली अधिकारियों के अनुरोध पर नेपाल के जनकपुर और भारत के जयनगर के बीच रेल सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि संघर्षरत नेपाल में फंसे पर्यटकों को वापस लाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की और दोहा में हाल में हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत कतर की संप्रभुता पर आघात की निंदा करता है। दुबई में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप ए मैच में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 9 विकेट से हरा दिया है। 58 रन के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने केवल 4 ओवर और 3 गेंद में मात्र 1 विकेट खोकर आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।